अगले दिन अक्षय आहाना के साथ रूपाली जी के वार्ड के बाहर खड़ा था। दिन का समय था, बच्चे स्कूल गए हुए थे। रूपाली जी के पास अंतरा और अभिजीत जी थे। अन्वय शोरूम गया था। आखिर कितने दिन तक काम बंद रखा जाए? इलाज के लिए पैसे चाहिए थे और उसके लिए काम करना जरूरी था। वार्ड के बाहर आहाना के कदम पल भर को ठिठके। अक्षय उसकी हथेली थामे दरवाज़ा खोलते हुए अंदर चला गया। आहाना की नज़र जब रूपाली जी पर पड़ी तो पल भर को उन्हें पहचान नहीं सकी। शरीर और कमज़ोर हो गया था। वो हॉस्पिटल बेड पर बेजान सा पड़ा था। हल्के बिखरे सफ़ेद बाल, बूढ़े चेहरे पर आई हल्की झुर्रियाँ अब ज़्यादा छलकने लगी थीं। जिस मुंह से वो हमेशा कड़वी, जहर भरी, घटिया बातें किया करती थीं, वो हल्का टेढ़ा सा हो गया था। उन्हें इस बेबस और लाचार हालात में देखकर आहाना को उन पर दया आने लगी। मम्मी, आहाना आई है, अक्षय ने रूपाली जी को पुकारा। उन्होंने धीरे से आंखें खोली और नज़र अक्षय पर पड़ी। अक्षय ने आहाना की हथेली थामते हुए उसे उनके सामने खड़ा कर दिया। रूपाली जी की नज़र अब आहाना के भावहीन चेहरे पर पड़ी। आहाना को देखकर वे अपने हाथ हिलाने की कोशिश कर रही थीं। लब फड़फड़ा रहे थे। कुछ अजीब सी टूटी फूटी बिखरी आवाज़ बाहर आ रही थी। शायद वे कुछ कहना चाहती थीं। माफ, इतने शब्द समझ आए थे उन्हें। आगे भी वे कुछ कह रही थीं पर शब्द स्पष्ट रूप से बाहर नहीं आ रहे थे। हाँ, इन कोशिशों में उनकी सांसें ज़रूर फूलने लगी थीं और शरीर भी कुछ अकड़ने लगा था। वे तो साफ साफ कुछ कह नहीं सकी, पर शायद आहाना सब समझ चुकी थी और अब भी उसका चेहरा भावहीन था। रहने दीजिए, मत कहिए कुछ। नहीं हो रहा तो मत दीजिए खुद को तकलीफ। शांत हो जाइए। समझ गए हम कि आप माफ़ी मांगना चाहती हैं हमसे। तभी समझ गए थे जब आपने हमें बुलाया था। पर हमें आपकी माफ़ी नहीं चाहिए, क्योंकि हमने कभी आपको अपने आगे झुकना नहीं चाहा था। हमने बस आपका प्यार और अपनापन चाहा, जो हमें कभी मिला नहीं। अगर कभी कह सके तो हमसे माफ़ी मांगने के बजाय हमें हमारे सवालों के जवाब दीजिएगा कि आखिर क्या बिगाड़ा था हमने आपका। हमें आपने ऐसा क्या देख लिया कि इस कदर नापसंद रहे हम आपको? अगर आपको हम उस घर की बहू के रूप में स्वीकार ही नहीं थी तो क्यों अपने बेटे की हमसे शादी करवाकर हमारी ज़िंदगी को नर्क बना दिया? आखिर हमने ऐसा कौन सा गुनाह किया था जिसकी सज़ा आप हमें देती रहीं? ऐसा क्या छीन लिया था हमने आपसे कि इस कदर नफ़रत निभाती रहीं आप हमसे? फलक और अंतरा की प्रेगनेंसी में आपको कितना ख्याल रहता था उनका? प्रेग्नेंट तो हम भी थे, वो भी आपके ही बेटे का बच्चा था। फिर हमारे साथ इतना कठोर व्यवहार क्यों था आपका? क्यों आपको कभी हमारे या हमारे बच्चे की परवाह नहीं हुई? क्यों उस वक्त आपने हमें हमारे मायके नहीं जाने दिया? क्यों उस दिन आप हमें घर में अकेला छोड़कर चली गई थीं, जबकि हमने आपको बताया था कि हमारी तबीयत ठीक नहीं है? आपके कारण हमने हमारे बच्चे को खोया, पर कभी आपको दोष नहीं दिया, क्योंकि आपको तकलीफ नहीं देना चाहते थे। पर आपको कभी हमारी तकलीफ, हमारा दर्द नज़र नहीं आया, क्यों? आप एक क्रूर और निर्दयी सास तो थीं ही, पर जब हमारी बारी आती तो आपके अंदर की इंसानियत भी मर जाती थी, क्यों? आपने हमें बहू, औरत तो क्या, इंसान तक नहीं माना। ऐसा क्यों किया आपने हमारे साथ? आपके बेटे की पत्नी थे हम, पर आपने हमें कभी ना अपने दिल में वो जगह दी और ना ही वो मान। हम उस आखिरी दिन तक हम सच्चे दिल से कोशिश करते रहे आपके दिल में जगह बनाने की, पर आपका हमारे लिए व्यवहार कभी नहीं बदला। एक वो वक्त था जब हम आपका प्यार, साथ और आपके दिल में थोड़ी सी जगह बनाने के लिए आपके हर अत्याचार खामोशी से सहते रहे, पर बदले में हमें हमेशा आपकी नफरत, कड़वे ताने मिले। और एक आज का दिन है जब हमारे पास आपको देने के लिए कुछ भी नहीं। हम तो आपसे नफरत भी नहीं कर सकते। आप अक्षय जी की माँ हैं। आपने भले हमेशा हमारे पति को हमसे दूर करने की कोशिश की, पर हम आप जितने स्वार्थी नहीं हैं। हम आपके बेटे को आपसे दूर नहीं करेंगे, पर हमसे आपका कोई रिश्ता नहीं। आप अक्षय जी की माँ जरूर हैं, पर हमारी कुछ नहीं लगती। जब आपने ही हमें कभी अपनी बहू के रूप में नहीं स्वीकारा, तो अब हम भी आपको अपनी सास नहीं मानते, क्योंकि जो आपने हमारे साथ किया उसके बाद एक सास तो क्या, एक औरत और इंसान कहलाने का हक भी खो चुकी हैं। इसलिए अब हमारे पास आपको देने के लिए न नफरत है और ना ही माफी। हाँ, अगर कभी आपको हम पर तरस आ जाए तो हमें हमारे सवालों का जवाब दीजिए। सजा तो बहुत भुगत ली हमने, अपना गुनाह भी जान लेंगे तो दिल को तसल्ली रहेगी कि हमारी ही गलती थी जिसकी सजा हमें दी गई। आहाना कहना तो नहीं चाहती थी, पर आज जब जुबान खुली तो दिल की हर बात अल्फाजों के रूप में ढल गई। आहाना के चेहरे पर कई भाव उभरे थे और वो खुद नहीं समझ सकी कि भावनाओं में बहकर वो क्या क्या कह गई। जब उसे अपने शब्दों का आभास हुआ तो एकदम से चुप हो गई और तेज कदमों से चलते हुए सीधे वार्ड से बाहर निकल गई। अक्षय अवाक सा खड़ा उसे देखता ही रह गया। अंतरा और अभिजीत जी भावहीन से खड़े आहाना की आप बीते की कहानी सुनते रहे। आहाना के यूं अचानक से चले जाने पर अक्षय कुछ विचलित सा हो गया, पर उसे अपनी माँ की भी चिंता हुई। उसने रूपाली जी को आहाना की कही बातों के लिए सफाई देनी चाही, पर उन्होंने इनकार में सर हिलाते हुए उसे कुछ भी बोलने से रोक दिया और आंखों से उसे आहाना के पीछे जाने का इशारा करने लगी। साथ ही मुंह से कुछ आवाजें भी निकालने लगी। शायद अक्षय को आहाना के पीछे जाने को कह रही थी।
अक्षय ने एक नजर अभिजीची और अंतरा को देखा, फिर आहाना के पीछे दौड़ गया। वार्ड के बाहर निकलकर उसने चारों ओर नजरें दौड़ाई। आहाना उसे कॉरिडोर के एंड के पास कोने में खड़ी नजर आई। अनु, अक्षय की आवाज जैसे ही आहाना के कानों से टकराई वो उसकी ओर पलट गई और नाराजगी भरे स्वर में बोली, इसीलिए हम दोबारा उनके सामने नहीं आना चाहते थे, पर आप हमें यहाँ लेकर आए और देखिए क्या हो गया हमसे। हम ये सब नहीं कहना चाहते थे उन्हें, पर खुद को रोक नहीं सके। उनकी तबीयत पहले ही खराब है, अब अगर उनकी हालत बिगड़ी तो उसके दोषी हम ही कहलाएंगे।